दिल में तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार तेरी ही प्यार से छाएंगे वही पारा मुरलियों में कुछ बहुत सुंदर बातें आ रही हैं आजकल। आ रही हैं सुंदर? सबसे सुंदर बात क्या आ रही है? आ रही है, कई दिनों से चलता आ रहा है, लहर चल रही है, भाई भाई की दृष्टि। आज तो उसको बाबा ने कर्मातीत से जोड़ दिया। कर्मातीत होने का सबसे सहज साधन ये सहज भी है, और भाई भाई की दृष्टि से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इम्प्योर ख्याल खत्म हो जाएंगे, और एक बड़ा फायदा है? और कुछ? ये बात आप सभी को जाननी भी है और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि किसी भी चीज का यदि फायदा मालूम होता है तो उसको करने में बहुत रुचि रहती है। दो बहुत बड़े फायदे, और एक तो है ही जिसके लिए बाबा की मुरली चली, कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। याद है कल की मुरली थी ना? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करने से अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दृष्टि न केवल इससे निगेटिव विचार चलेंगे, व्यर्थ इम्प्योर, लेकिन दैहिक दृष्टि होने से मन ऐसे ही भटकेगा, है ना, मतलब ही कहीं कहीं जो हम नहीं चाहते वो सोचते रहेंगे। बात देह की सोचने की नहीं, मन को भटकाती है दैहिक दृष्टि। इसलिए जिसकी एकाग्रता नहीं होती है, चाहे योग में, लौकिक पढ़ाई में, आपके बच्चों की ये समस्या होती है, लौकिक पढ़ाई में एकाग्रता नहीं। कई होगी समस्या होती है, अभी भी कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा था बाहर, मैं एक काम करता हूँ तो बुद्धि उसमें रहनी चाहिए ना, दूसरे में रहती है, फिर जब वो काम करूँगा तो तीसरे में जाएगी, रहनी उस काम में चाहिए जो कर रहे हैं, लेकिन जाएगी कहीं और। ये मन और बुद्धि की ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसके बारे में मनुष्य समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है, आत्मिक दृष्टि ऑटोमेटिकली एकाग्रता को बढ़ाएगी। मुझे एक दूसरा संकल्प आ रहा तेजी से, लेकिन मैं ये बात कह दूं पहले आपको। दूसरा, जब किसी को हम आत्मा देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे हमारे वाइब्रेशंस मिलेंगे। माताएं अगर अपने बच्चों को बहुत फ्रेश देखना चाहती हैं तो उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखो। इस दृष्टि से देखो, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, और अच्छे वाइब्रेशंस चाहेंगे। ये सबको अनुभव करना है। ये दो बड़े फायदे आत्मिक दृष्टि से प्राप्त होंगे। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये, रोज मुझे आने वाले फोन्स में एक चीज की समस्या बढ़ती जा रही है लोगों की, और वो है डिप्रेशन। पता है ना सभी को, छोटों को बढ़ता जा रहा है, छोटों को। एक अनुभव सुनाऊं बस, केवल एक बहन का फोन आ रहा, मेरा लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, 12वीं क्लास में है, 11वीं से IIT की तैयारी कर रहा था, अब क्या हुआ थोड़े दिनों से सोता रहता है, खाने को मन नहीं करता उसका, पढ़ने को मन नहीं करता, साइकेट्रिक को दिखाया तो कहा इसको डिप्रेशन शुरू हो रहा है। ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और मैं अपने युवकों को, संसार के युवकों को एक बात कहता हूँ, अभी टीवी अच्छा माध्यम है ना अपनी बात कहने का, जो युवक कन्याएं भी यहाँ बहुत बैठी हैं, जो युवक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों में आ गए हैं, सुन ले सभी माँ बाप उनके, अगले 5 साल में वो सभी डिप्रेशन में आ जाएंगे और उससे निकलना किसी के वश का नहीं होगा। डॉक्टर के पास डिप्रेशन की दवाई नहीं है, वो तो पैसा कमाते हैं केवल, क्योंकि डिप्रेशन होता है मन में और दवाई दी जाती है ब्रेन को। मुझे साइकेट्रिक डॉक्टर ने बताया कि मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट अच्छा होते नहीं देखा है, बिगड़ता ही जाता है हाल, क्योंकि दवाई देते हैं ब्रेन को डल करने की, ठंडा हो जाए, उसे ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। चलिए आप सभी अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे इस माया से, माताएं उत्तर दो, कहने से वो आपकी बात नहीं मानेंगे। गुड वाइब्रेशंस और पवित्र भोजन, आप यदि बहुत अच्छे स्वमान में रहेंगे तो आपके बोल में प्रभाव आ जाएगा। एक ग्रुप में नीचे था अभी, एक ग्रुप मिलने आया इलाहाबाद का, ज्ञान में अभी 2-2 मास से, कहा मेरा एक लड़का बहुत तेज तराक, उसको कंट्रोल करना किसी के बस का नहीं था, अब टीवी देखती है ये प्रोग्राम 1 मास से, कहा मैंने एक ही चीज सीख ली, खुद को बदलना है, कहा मैंने अपने को बदलना प्रारंभ किया और 1 मास में ये स्थिति हो गई कि बच्चा इतना शांत हो गया तो मुझे सिखाता है मम्मी शांत, कहा मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, अब वो मुझे शांत करता है। वो ऐसा बच्चा था अब तक जो आज तक परिवार का कोई व्यक्ति उसे चुप नहीं करा पाया था। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, खुद को बदलने से ही दूसरों को बदला जा सकता है। माँ बाप क्या गलती करते हैं, आदेश देते हैं बच्चों को, सब माँ बाप जानते हैं ना, आदेश, और बच्चे आदेश को मानते नहीं। छोटे बच्चों का ये हाल है, 10 साल के बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं और क्या कहते हैं, छोटे बच्चे, कल मुझे कोई बता रहा फोन पर कि मैं रोज, एक माँ कह रही मैं रोज, हमारे घर में सात्विक भोजन बनता है, आज मैं बिजी थी, सवेरे नाश्ता बनने में देर हो गई, 10 साल का लड़का अंडे लाया और आमलेट बना के खाया, मैंने कहा क्यों ऐसा करते हो, डांटा उसको, कहा तुम पुराने जमाने की माताएं, अब जमाना बदल चुका है। 10 साल का बच्चा कह रहा है, उसे पता जमाना बदल चुका है, तुम्हारा जमाना पूरा हुआ, अब हमारा जमाना। संसार का हाल तेजी से बिगड़ता जा रहा है, समझ रहे हैं आप सभी। विदेशों की कहानी सुनो तो अति तमो प्रधानता है वहाँ, अति, उसको हम वर्णन भी अपने मुख से नहीं कर सकते, लग जाएगी सुनने वालों, आपको भी लग जाएगी, मुझे भी आएगी, वही स्थिति तेजी से भारत में बढ़ती जा रही है। काम वासना की आंधी चल रही है। आप यदि अपने बच्चों को चरित्रवान रखना चाहते हो, उनका भविष्य अच्छा हो, तो आपकी स्थिति का ही प्रभाव उन पर होगा, बोल का नहीं। नहीं तो बच्चे परिवारों के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। मैं एक माता को हंस रहा था, उसने कहा मेरा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है, एक ही लड़का है, रात को 12 बजे आता है, मैं खाना गर्म करके देती हूँ, थाली फेंकता है, ये नहीं चाहिए ये बनाओ, मैं रात को उसके लिए भोजन बनाती हूँ, एक बज जाता है, कभी वो खुश होता है कभी नहीं, मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है, मेरी नींद खत्म हो रही है, बाप को तो मारता है वो। मैंने कहा तुमने तो कहा था भगवान को, भगवान एक बच्चा दो, लड़का चाहिए लड़कियां नहीं, अब संभालो उसे, तुमने ही तो कहा तो था। मैंने कहा ये नहीं कहा होगा कि प्रभु चरित्रवान बच्चे दो, लड़का चाहिए, चाहे वो नाक में दम कर दे। तो संसार का हाल दयनीय होता जा रहा है। खास मैं माताओं को कहता हूँ, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति, बोलो ये स्लोगन सबको याद रखना है, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति बदल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भूलना नहीं ये स्लोगन। स्थिति बिगाड़ी तो परिस्थितियाँ उलझती जाएंगी। ये सूक्ष्म गति, ये सूक्ष्म सिद्धांत सभी को याद रखना है। पसंद है? स्थिति बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, इसलिए सभी एक बहुत अच्छी बात अपनी बुद्धि में समा कर चले, ध्यान से सुन लेना। बाबा का महावाक्य, कई बच्चे समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि कौन हमारा साथी है। मुझे बात बहुत पसंद आती है, मैंने लिखी हुई है अपनी एक सामने की जगह पर, मैं इसे पढ़ता रहता हूँ कि कोई बात हमारे सामने आए, हम ये न भूले कि स्वयं भगवान हमारा साथी है। एक लाइन और बना लेना, अभी बना लेना, जो आएंगे उनकी बना, पीछे की आ जाओ, दो चार माताएं पीछे की आ जाओ। दूसरी बात बाबा की मूल्यों में आ रही है, आत्मिक दृष्टि की बात पे बहुत ध्यान देना है। मैं आपको एक और सुंदर बात इसके बारे में कह दूं, टीचर बहने बैठी हैं, जब तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से आत्मा पर जाएगी, तब संसार के मनुष्यों की दृष्टि तुम चमकते हुए सितारों की ओर आएगी। ये इतनी जबरदस्त बात है बाबा की। आत्मिक दृष्टि हमारी बहुत सुंदर साधना है, क्योंकि इससे ही आत्मा संपूर्ण पावन होती है, कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, और जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती है तो क्या होता है, और रहस्य पे ध्यान देंगे आप, जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती है, देवकुल की आत्माओं को आकर्षण होता है और वो बाबा के पास आ जाती हैं। संतों के लिए ये बात बहुत पावरफुल है, निमित्त आत्माओं की प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, आने वालों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए आत्मिक दृष्टि पर बहुत ध्यान देना है। माताओं को अपने घरों में, भाइयों को भी एक काम करना चाहिए, आप ध्यान से ये बात सुन ले, नोट कर ले, और दिन में दो बार ये प्रैक्टिस करेंगे। क्या जितने भी घर के लोग हैं उन्हें आत्मा देखें और संकल्प करना ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। मेरे बच्चे हैं, कोई अच्छा है कोई नहीं है, इसने तो मुझे बहुत तंग कर दिया, ये सब नहीं, ये आत्माएं हैं, देव कुल की महान आत्माएं हैं। और आप देखना कैसा वातावरण बनता है आपके घर में, करके देखना दो बार रोज, कितने सुंदर वाइब्रेशन आपको फील होंगे कि हमारे घर का टोटल माहौल बदलता जाता है। एक बहुत सुंदर बात जो मुरलियों में आप सबने सुनी है, आज भी थी वो, ऐसा अभ्यास करो याद का कि अंत में आती है ना ये बात बहुत, और यही सर्वोच्च स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है कि अंत में किसी की भी याद ना आए, क्योंकि अंत में अगर हमारी याद इधर उधर बिखरी होगी तो क्या नुकसान होगा। ठीक बोल रही आप, और बोलो है क्या गति होगी। वो तो बाबा ने एक बात सुना ही रहा है, एक बड़ा नुकसान ये होगा। एक तो बहन जी ने बताया कि हमें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कल की मुरली में या आज की मुरली में एक बहुत अच्छी बात थी, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं वो जल्दी जल्दी जन्म लेंगे, मृत्यु एक एक साल में जन्म और मृत्यु होगी, तो जन्म और मृत्यु में ही बहुत ज्यादा कष्ट होगा आत्माओं को, इससे उनके विकर्म नष्ट होंगे। लेकिन अंतिम समय में जब इस संसार में हाल सबका खराब हो रहा होगा, अगर हम इधर उधर याद कर रहे होंगे बहुत कुछ याद आएगा ना, तो हम सोचो, फिर से सोचो, हम देका सेकंड में त्याग नहीं कर पाएंगे, आत्मा देह में उलझ जाएगी और जितनी देर उलझी रहेगी उतनी देर अति भयानक सजाएं प्राप्त होती रहेंगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई है लोगों ने, कितनी मंजिलों की है, माताओं को पता है, छोटे शहरों में तो है नहीं, दो तीन मंजिल होती है। दुबई में सबसे ऊंची स्टोरी इमारत कितनी है, 140 140। मैं भी देख के आया हूँ, दूर से तो लगता था खंबा खड़ा है, बहुत ऊंचा, टीवी के टावर लगाते हैं ना ऐसा लगा के ये मोबाइल के टावर लगाए हुए। फिर कहा यही संसार की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर उसके पास भी गए, वहाँ एक प्रोग्राम होता है, वहाँ का पानी तो है नहीं वहाँ, तो उन्होंने सागर का पानी बीच में लाया हुआ है और उसमें एक शो दिखाते हैं लाइट एंड साउंड का। वो बिल्डिंग उसी के किनारे पर है, तो देखा नीचे से बहुत चोरी, फिर थोड़ा थोड़ा कम करते बहुत सारी मंजिल उठाई, 140। बॉम्बे में भी बहुत है, आजकल शहरों में बनने लगी 8 मंजिल 10 मंजिल 12 मंजिल तो कॉमन हो गई। विनाश में क्या होगा, ये गिरेंगी, गिरेंगी तो जरूर। वहीं दुबई में एक युगल मेरे से मिलने आया, माता बहुत दुखी थी, कहा मैं बहुत भयभीत हूँ। क्या हुआ, अप्रैल में, इस साल हो गया अब तो अप्रैल को, कहा अप्रैल में भूकंप हुआ था, तो ये रहते एक ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग ही है लगी, ये 25वीं मंजिल पे रहते हैं। कहा मैं अपने दोनों बच्चों को उठाकर सीढ़ियों से उतरती हुई बाहर आई, सीढ़ियों से 25 मंजिल। हम लोग तो चढ़ भी नहीं सकते, बहुत लोग चढ़ नहीं पाएंगे। तब से मैं इतनी भयभीत हूँ कि अपने कमरे से बाहर नहीं देख सकती खिड़की से, हाथ पर इफेक्ट आने लगता है। अभी सोचो आप, एक ऊंची बिल्डिंग गिर गई, उसमें हजारों लोग दब गए, हजारों रहते हैं ना, सबकी एक साथ मृत्यु नहीं हुई, कुछ लोग दब गए हैं, सिर दबा हुआ है, हाथ दब गए, टांगे टूट गई, खून बह रहा है, पूछने वाला कोई नहीं, प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, पानी वहाँ है नहीं। कल्पना करो सीन की। एक दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक एक दिन कितना लंबा होगा, 24 घंटे के 7-7 मिनट का एक घंटा कितना भारी होगा। ये होंगी धर्मराज की सजाएं और ये बातों को होने वाली हैं। शहर के शहर जमीन में धंस जाएंगे, लोग एक साथ नहीं मरेंगे। उस टाइम देह छोड़ना ही सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। सेकंड में गए और वो वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे समय से योग का अच्छा अभ्यास किया है, शरीरीपन की बहुत अच्छी मेहनत की है। ये महत्व है इन चीजों का, अंत में फट से शरीर छोड़े, स्वेच्छा से छोड़े, स्मृति स्वरूप होकर छोड़े, आत्मा शरीर में फंस न जाए, चिपक न जाए। उस टाइम याद आएगा, हाय मेरे बच्चे भी तो दबे होंगे, उनका क्या होगा, हाय मेरी इतनी संपत्ति थी उसका क्या होगा, मैंने तो ज्वेलरी संभाल के रखी थी अटैची में उसका क्या होगा। आएगा नहीं, जहाँ जहाँ बुद्धि अटकाई होगी वो सब आत्मा को खींचता रहेगा, एक ओर दबे पड़े हैं, दूसरी ओर ये सब याद आ रहा है, जबकि उसको याद करने से कुछ खुद ही दबे पड़े बच्चों को देख सकेंगे, ज्वेलरी ला सकेंगे, लाएंगे भी तो क्या होगा, वहां से निकालने वाला कोई नहीं है। अब वो समय ऐसा हो जाएगा, सरकारें, मिलिट्री, पुलिस सब हाथ खड़ा कर देगी, कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए अभी से सब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। कौन सी? शरीरी होना, योग अभ्यास। सब चेक करेंगे, आज हमारा शरीर छूटे क्या क्या याद आएगा। मान लो कह दिया जाए 5 मिनट में चलना है घर, बाबा आ जाए और कहे 5 मिनट बचे हैं, यमदूत आ जाएंगे, लेने आएंगे यमदूत या नहीं, आपको नहीं, कौन आएंगे लेने, बाबा आएगा, फरिश्ते आएंगे और बाबा कहते 5 मिनट बचे हैं, चलो क्या क्या याद आएगा 5 मिनट में। लंबा हो जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट के 300 सेकंड हो जाएंगे, एक एक सेकंड भारी पड़ेगा। इंतजार के 5 मिनट बहुत लंबे होते हैं, 3 मिनट गीत बजता है ना ट्रैफिक कंट्रोल का, जिनका योग नहीं लगता बहुत लंबा गीत है तो 3 ही मिनट का लगेगा, बड़ा लंबा गीत है तो पूरा ही नहीं हो रहा, आज लोग बोल भी देते हैं मुख से बड़ा लंबा गीत है। एक बार हम दादी के साथ बैठे, यही इंद्रप्रस्थ है ना, जब यही रहते थे, 12 बजे का गीत बज गया, किचन वाले बैठे थे, ऐसे ही दादी ने बुलाया था, गीत बज गया तो एक बहन को योग वादी आता नहीं लगा, आखिर उसने बोल ही दिया जब 2 मिनट, बड़ा लंबा गीत है, सब इतने हंसे योगी टूट गए, फिर लंबा कहाँ है, 3 ही मिनट का है। तो वो 5 मिनट बहुत भारी पड़ेंगे, इसलिए क्या प्रैक्टिस करनी है, बोलो क्या प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर ले। अपनी एक एक चीज को देखो और संकल्प करो ये छोड़कर जाना है, जब तक है उसका सुख ले, मान लो कार है आपके पास, ठीक है, उसका सुख लो, आप आओ जाओ उसमें बैठो, लेकिन उसको देखकर ये संकल्प कर दो बाबा ये तुम्हारी है और तुमने हमें दी है यूज करने के लिए और इसे छोड़कर हमें चलना है। माताओं के पास जो छुपा हुआ खजाना है उस पर भी नजर डालो, ये सब छोड़ना है, सब छोड़। एक बूढ़ी नानी ने गठरी बना के रखी थी सोने के और चांदी के जेवरों की, उसकी थी कोई कि इसकी शादी में ये सब दूंगी, वो बन गई बहन ब्रह्मा कुमारी है, उसको शादी नहीं करनी। अब ये उसको गाली भी दे और शरीर भी न छोड़े, बूढ़ी हो गई बहुत, उसने भी समझाया कि नानी दे दो ना मुझे, मैं नहीं शादी करो तो दूंगी आखिर जब वो कहीं दी गई तब उसका शरीर छूटा, आत्मा जैसे उसमें फंस के रह गई थी। तो ये बड़ी सूक्ष्म गति है, आत्मा जहाँ से भी गहराई से अटैच हो गई वो उसको रोके रखेगा। और अंत में याद रखना आप इस बात को, तुरंत शरीर छोड़ना ही सबसे बड़ा वरदान होगा, नहीं तो ये स्थिति अति कष्टदायक हो जाएगी मनुष्य आत्मा के लिए। तो एक एक चीज को आप देखें और ऐसी फीलिंग करें ये विनाशी है, बाबा को अर्पित कर दो मन से, ये तुम्हारे हवाले, हम यूज कर रहे हैं इसे छोड़ कर एक दिन जाना है, ये संकल्प ही बहुत बड़ी मदद करेंगे। चाहे कुछ भी है हमारे पास, हम यज्ञ में हैं, कुछ भी है हमारे पास, बुद्धि तो किसी की कहीं भी अटकी रह सकती है। और इसके लिए हमें ये भी याद रखना है कि मिलने क्या जा रहा है। आज स्वर्ग का एक नक्शा बाबा ने थोड़ा सा खींचा, हवाएं भी वहाँ सदाबहार, मैं और जोड़ दूं एक शब्द, वहाँ हवाओं में भी सुगंध होगी, हवाओं में भी सुगंध। अगरबत्ती वहाँ, अगरबत्ती वालों का धंधा बंद, वहाँ अगरबत्ती जलेगी नहीं, सभी के पास बगीचे बहुत सुंदर होंगे, उसमें फूल, आजकल के फूलों में तो खुशबू है ही नहीं, बहुत कम है। हमारे यहाँ कभी कभी बाहर ये है बहुत अच्छा, उसकी रात की रानी की खुशबू आती है जब वो फूल खिलते हैं, वहाँ तो रात की रानी हो या दिन का राजा हो सब महकेंगे, सुगंध ही सुगंध होगी, हवाओं में भी इसलिए सुगंध होगी, पानी भी बहुत मीठा और बड़ा स्वादिष्ट होगा। ऐसे स्वर्ग को यदि हम याद रखें, सोना हीरे कितने होंगे, कितने होंगे, माताएं उत्तर दें, आपकी साड़ियां हीरों से जड़ी होंगी, पाउडर भी सोने का होगा, हीरो का तो बनना मुश्किल है, सोने का होगा, मिट्टी में भी सोने के कण मिले हुए होंगे। ये बात आपको शायद न पता हो, मिट्टी में, खेती की मिट्टी नहीं, दूसरी मिट्टी में सोने के कण मिले हुए होंगे, चमक होगी, सुनहरी चमक होगी मिट्टी में भी। तो ऐसी अथाह धन संपत्ति जहाँ गिनती नहीं, जहाँ उसके दाम नहीं, जहाँ उस पर कोई छीना झपटी नहीं, कोई चोर लुटेरा नहीं, ऐसी सुंदर दुनिया बाबा हमें देकर जाएगा। गीता में बहुत अच्छे महावाक्य हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सो, इस यज्ञ से तुम देवताओं को तृप्त करो और देवताएं तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। बाबा ने ये यज्ञ रचकर हम सबके हाथों में देकर कहा, इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ, कहते हैं ना रोज, इसे सफल करो, जो यहाँ देवकुल की आत्माएं आ रही हैं वो तृप्त करो उन्हें, ये कहा ना बाबा ने। संसार को स्वर्ग बनाकर बाबा हमारे हाथों में सौंप कर जाएगा। लो दो युग तक संभालो। आज कितनी अच्छी बात थी श्री कृष्ण, याद करो श्री कृष्ण कितना बुद्धिमान होगा जो विश्व पर राज करता है, जिसे किसी की राय की भी जरूरत नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान होगा। नहीं कहा उसने रानियों को भगाया तो पूछते क्यों हो, कितना अच्छा तर्क है ये। कोई किसी को भगा ले उसकी कितनी बदनामी होती है समाज में, कोई उसे पूछता है, तुम श्री कृष्ण को पूछ भी रहे हो और गाली भी दे रहे हो, कितनी अच्छी तर्क और गुह्य बातें बाबा हमें सुनाते हैं। तो अपने भविष्य को याद करेंगे, क्या मिलने जा रहा, जरा सोने की दुनिया सामने तो लाओ, यहाँ से मोहम्मद तो उठ जाएगा। मैं एक बहुत हंसी की और प्रैक्टिकल बात आपको सुनाऊं। दो तीन साल पहले ग्रह घूमते घूमते धरती से टकराने वाले थे, टकराए नहीं थे, कहाँ पास से गुजर गए हैं धरती से, टकराया कोई नहीं। तो तब वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक 10 किलोमीटर रेडियस का छोटा ग्रह है जो हीरो का बना हुआ है, हीरे ही है उसमें, क्योंकि आकाश में अथाह धन संपदा है। जो गीत बनाना हमारा भारत फिर भरपूर बनेगा, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। अथाह धन संपदा धरती के अंदर है और आकाश भरा हुआ है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था बृहस्पति ग्रह जो है धरती से 1300 गुना बड़ा, धरती से 1300 गुना बड़ा का उस पर हीरो की बरसात होती रहती है। ये जो बहुत सारे तारे चमकते हैं वो हीरो के हैं, हीरे हैं उनमें मिट्टी के साथ। तो बताया वैज्ञानिकों ने 2029 में ये जो हीरो का ग्रह है ये धरती से टकरा जाएगा। तो जब धरती पे गिरेगा क्या होगा, थोड़ा बहुत विनाश तो करेगा लेकिन हीरे ही हीरे बिखरे पड़े होंगे। सागर भी उछल कर धरती पर आएगा, सागर के तले में भी हीरे मोती रतन बहुत हैं, वो भी धरती पर आ जाएंगे। पानी पीछे हटेगा वो भारत की भूमि पर पड़े होंगे। इसलिए कहा सागर ने थाली भर भर देवताओं को रतन दिए, उसका रहस्य ये है। तो अथाह धन संपदा मिलने जा रही है। एक एक का घर कितना बड़ा होगा भाई बताएंगे, आजकल तो नापना पड़ता है ना, 100 फुट मिलेगी बस, 100 गज मिलेगी बस, बना लो छोटा सा मकान। कितना बड़ा घर होगा एक एक का, कम से कम एक एक किलोमीटर एरिए का, उसमें बाग बगीचे तालाब खेती भी अपनी सब कुछ उसी में होगा, क्योंकि लोग थोड़े देवता थोड़े और भूमि लंबी चौड़ी। तो इतना बड़ा स्वर्ग बाबा हमें देकर जाता है, है खुशी या नहीं। बाबा ने कल परसों कहा था आईएएस आईपीएस एग्जाम पास करता है कोई, कितना नफा चढ़ जाता है उन बच्चों को, अब कलेक्टर बनेंगे। और तुम कौन सा एग्जाम पास कर रहे हो, विश्व महाराजन बनेंगे, तुम्हें भी इतना नशा होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बात रोज की मूल्यों में आती है, सभी उस पर ध्यान देंगे और उसी दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे अच्छी पालना हमारी मुरली के द्वारा होती है। जब मुरली सुने तब भी बहुत अच्छा अभ्यास करे उसी का, और सारा दिन भी उसे याद रखे। 2-3 दिन से आई है एक बात, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, और तुम्हें पढ़ाते हैं, आज भी थी, तुम्हें पढ़ाते हैं स्वयं भगवान। ये नशा हो जाएगा। देखो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, परसों मुरली थी देही अभिमानी बनो, याद है ना, कल भी थी आज भी थी वही लहर चलती आ रही है, पर परसों पूरी थी देही अभिमानी बनो। तो आजकल मैं भी सवेरे 5 बजे एक बार मुरली सुन लेता हूँ, फिर वहाँ सुनता हूँ, फिर नीचे जाते हैं तो आजकल हमने ऐसा किया हुआ वो फोन में आती है मुरली, तो जाते हुए भी सुन लेते आते हुए भी, तो इतना रस आ गया कि 3 बार तो रोज सुन ही लेते हैं, कभी 4 बार भी, तो उसकी बातें बहुत पक्की होती जाती है। तो परसों मैंने क्या किया, सवेरे 5 बजे मुरली सुनी, देखा देही अभिमानी पर मुरली है, बड़ी डीप है, तो मैंने तब से स्नान करना था उसमें अभ्यास किए, जैसे ही मुरली के समय आया मैं 10 मिनट पहले ही आता हूँ, तो मैंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया। और पहला जो गीत बजता है ओम शांति वाला 3 मिनट का, उसमें आत्मा के 7 गुणों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। और जो दूसरा गीत बजा उसमें बाबा पर, वो 5 मिनट का होता है, 5 मिनट फुल कंसंट्रेशन अच्छे संकल्पों के साथ, तो मेरे ये 20 मिनट इतने सुंदर भी थे कि सारा दिन उसका इफेक्ट देखने को मिला। मैं रोज ही ऐसा करता हूँ कि मुरली के समय को मैंने अपनी पालना का सर्वश्रेष्ठ समय बनाया हुआ है, आप भी बनाओ। मुरली का समय हमारी पालना का सर्वश्रेष्ठ पीरियड है, उसमें हम बहुत अच्छी स्थिति में मुरली सुने, मैंने पूरी मुरली फिर सुनी और मुरली के बीच में अनेक बार देही अभिमानी की प्रैक्टिस कर ली। सुनाने वाली भी आत्मा और मैं आत्मा कानों से सुने, आवाज यहाँ से जा रही और आत्मा में समा रही है, आंखें देख रही हैं, आत्मा से किरणें आ रही हैं, आत्मा में जा रही हैं। तो इतना आनंद हो गया, 1 घंटे में 1.25 घंटा हुआ, ऐसा लगा आत्मा की बहुत अच्छी पालना हो गई है। सभी पालना करें अपनी, मुरली में तो जाना है, जो नहीं जाते उन्हें जाना चाहिए, और इस मुरली के समय को अपने में शक्तियां भरने का समय बना लें, ताकि केवल हम मुरली महावाक सुनने नहीं आए हैं, परमात्मा शक्तियां भरने आए हैं, ऐसी गुड फीलिंग हो जाए। पसंद है? मैं बहुत साल से करता आया हूँ, मैं जब यहाँ बैठा आज भी आकर, तो मुझे याद आया, आप में से तो शायद ही कोई बाबा के समय का हो, कोई है बाबा के समय के, तो बाबा यहीं बैठते थे बीच में, ये मामा की कंदली थी और ये खाली रहती थी, कोई बच्चे आकर कुछ सुनाते है ना, यहाँ बैठते थे, तो यहाँ मामा बैठती थी, यहाँ बाबा। मुझे याद आ रहा था, कभी कभी ये हॉल भर जाता था, इतने भाई बहने होते थे, तो बाहर भी 1-2 बेंच डाल दी जाती थी, कुर्सियाँ तो होती नहीं थी उन दिनों, ये सब जो आजकल प्लास्टिक युग है, तब तो कुछ नहीं था। तो मुझे कई बातें आज यहाँ याद आई। एक सबसे सुंदर बात जो मैं सुना देता हूँ आपको, वो एक ही बार घटना हुई बाबा की, ये बात है 68 जून की। तो हम भी वहाँ बैठे थे और बाबा जैसे ही आए, तो पहले बाबा वहाँ खड़े होते थे दरवाजे पर और एक नजर में सबको देखते थे, और ऐसा लगता था कि करंट फैल गया है सारे हॉल में, ये बहुत वंडरफुल फीलिंग होती थी। बाबा आकर बैठे, गीत बजता था, यही गीत का सारा सिस्टम था, यहाँ इधर सब कन्याएं बैठती थी, यहाँ बाबा कन्याओं को बैठाता था, बाकी सबको सामने। तो बाबा उठे 2 मिनट के बाद, उठने से पहले एक बात कही कि आज सभा में कोई बहुत महान आत्मा आई है, सभा में छुप गई है, बाप उसे देखना चाहते हैं। तो बाबा यहाँ से उठे और बीच से चले, इधर भी दृष्टि दी और इधर भी,
वो सीन बहुत ही सुंदर था। एक ही बार हुआ केवल, साकार के समय, फिर अव्यक्त में शुरू हुआ था। जो थे उन्होंने देखा होगा, बाबा चक्कर लगाया करते थे शांतिवन में, डायमंड हॉल में, वो भी बड़ा आनंदकारी था। ये सीन जिसने देखे वो भी भाग्यवान। क्या एक सुंदर बात बताऊं, माताएं बड़ी बुद्धिमान, भोली माताएं बड़ी बुद्धिमान। बाबा दृष्टि दिया उधर को, फिर दृष्टि इधर को घुमाई तो माता ने कहा बाबा, और बाबा ने फिर देखा। माताओं की बुद्धिमानी पे हमें इतनी वो होती थी कि ये माताएं जिन्हें लोग भोला समझते हैं, ये कितनी बुद्धिमान है कि भगवान को अगर आकर्षित करना है तो ऐसे करो, है ना बुद्धिमान। तो बाबा से हमारी पालना हो रही है। भाग्यवान है सभी जिनकी पालना, पर सबसे बड़ी पालना है मुरली और सवेरे की। सवेरे किसी को पालना न भी अनुभव हो, नींद आए या न उठे, लेकिन मुरली की पालना मिस नहीं करनी है। मुरली में भगवान हमसे बातें करता है, कोई भी मुरली पढ़े, लेकिन आत्मा और परमात्मा की रूढ़िहान होती है। बाबा भाषण नहीं करते थे, आत्माओं से बातें करते थे। तो इस पालना को कोई भी मिस न करे। पालना की बात आ गई तो लास्ट में मैं आपको एक सुंदर बात सुना देता हूँ। 5 मिनट हैं, 5 मिनट में मैं ये बात आपको कहूँगा और इसी के साथ आप सो जाना। आज अंत में किसी की याद न आए, करना प्रैक्टिस, मेरे पास जो है सब छोड़ के चलना है। हो सकता है एक ही ड्रेस हम पहने रहे बस, जीवन में भी ऐसे अनुभव होंगे कि और कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही चल दो। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हाथ में कुछ नहीं, बस खाली चल दो, जीते जी भी ये होगा। मरने पे तो खाली जाता ही हर व्यक्ति, पर यहाँ भी ये अनुभव होते रहेंगे। इसलिए अपने महत्व को निकालते चले। सबसे ज्यादा दुखों का कारण बनेगा महत्व, मोह ममता। अब वो बात है, बाबा की मुरली चल रही थी ओम शांति भवन में, तब तक ये दोनों नहीं बने थे, ज्ञानसरोवर और शांतिवन। और बाबा कह रहे थे तुम कितने भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। फिर बाबा ने प्रभु पालना सुनानी प्रारंभ की। मुझे बात बहुत प्रिय लगती है, मैं बच्चियों में जहाँ तहाँ सुनाता हूँ, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये भूलना नहीं है। सवेरे बाप तुम्हें उठाने आता है, रात को सुलाने आता है, फिर पढ़ाने आता है सवेरे, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है, फिर कोई बच्चा दुख में आंसू बहाए तो उसके आंसू पोंछने आता है। मुझे बात बहुत याद रहती है, भगवान जो मात पिता है, कोई दुख में आंसू बहाए तो वो उसके आंसू भी पोंछने आता है। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले अगर सुने इस बात को तो क्या कहेंगे, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, कहेंगे ना। कौन है ये जिन्हें जगाने सुलाने भगवान आता है कौन आखिर, लगेगा ना मनुष्य को ये कल्पना सुना रहे हैं या मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, इनको किसने बहका दिया, कहेंगे नहीं मनुष्य। भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, और फिर बाबा ने उत्तर दिया तुम उन्हें कह दो। क्या कह दो, भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब सोच लो क्या करना चाहिए, भगवान हमारे लिए खाली बैठा हो मदद देने के लिए, हमारे बोझ हरने के लिए, हमें शक्ति भरने के लिए, अपना साथ देने के लिए, तो हम क्यों परेशान हो? क्यों छोटे छोटे संकल्पों में उलझ कर दुखी रहें? सब विचार करेंगे, ये बात आप रोज याद किया करना, ठीक है ना? रोज याद करना, बाबा हम पर कितनी कृपा कर रहा है, मेहरबान हुआ है हम पर, सचमुच उठाने आता है अनुभव सबको है। जस्ट बाबा को रात को कह दो कि बाबा 2 बजे उठाना, ठक उठाता है ना। कह दो बाबा देर हो गई, 4 बजे उठा देना, ठक 4 बजे आँख खुलेगी। कोई कर सकता है ऐसा? अलार्म भी नहीं करता। तो ऐसा प्यार, पीछे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, बाबा तो तुम्हें गुड मॉर्निंग भी करता है, गुड नाइट भी, और क्या कहा था हंसी की बात, हाँ तुम करो, कितनी अच्छी बात है। ये कह के बाबा क्या याद दिलाते हैं, तुम भी करो। मैं करता हूँ, पहले तुम करो, नहीं तो मैं तो करूंगा ही, के बच्चे गुड नाइट सो जाओ। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। लास्ट बात एक और याद आ गई, कल की मुरली की, आज की, जो बाप को बहुत याद करते हैं, कल की थी ना। और एक बात थी सुंदर, वो तो जैसे बाबा के सामने खड़े हैं, बहुत सुख देने वाली बात है। जितना हम ज्यादा योग लगाते हैं, तो मानो हम बाबा के सम्मुख रहते हैं। जो भगवान के सम्मुख रहे, उसे क्या क्या देगा वो। तो ये बहुत सुंदर मुरलियाँ चल रही है। साकार मुरली कोई साधारण सिंपल नहीं, बहुत डीप है, बहुत डेप्थ लिए हुए है। सब इनका फायदा उठाएंगे और प्रभु पालना में अपने को मस्त करेंगे। ओम शांति।